लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर, हम आपसे समुद्री तटों पर कठिन परिश्रम करने वाले तथा वहीं पर जीवन यापन करने वाले समस्त नाविकों, मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना से उन्हें समर्थन मिले। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्तिगीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा कर रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का सातवां अध्याय युवाओं की प्रेरिताई के बारे में जिक्र करता है। युवाओं की प्रेरिताई के संबंध में हमने अपने पिछले प्रसारण में कई क्षेत्रों में विकास की चर्चा की, जैसे संगीत, रंगमंच, चित्रकारिता, खेलकूद इत्यादि। खेलकूद का केंद्र बिंदु खुशी है। कलिसिया के कुछ आचार्यों ने खेलकूद के पीछे युवाओं के प्रशिक्षण को इसलिए प्रोत्साहित किया जिससे वे युवाओं की शक्ति का विकास कर सकें और उन्हें व्यर्थ और नीरस जीवन जीने से बचाए रख सकें। श्रोताओं, प्रकृति बहुत से किशोरों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करती है जो उसकी देख रेख हेतु हमारे जरूरी कार्यों की ओर हमारा ध्यान खींचता है। स्काउट संघ और अन्य दूसरे समूहों के साथ ऐसा ही होता है जो हमें प्रकृति के निकट रहने, कैंपिंग ट्रिप, हाइकिंग, खोज यात्रा और पर्यावरण को अच्छा बनाने हेतु हमें प्रचार करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस की आध्यात्मिकता के आधार पर ये अनुभव हमें सार्वभौमिक भ्रातृत्व और चिंतनशील प्रार्थना के स्कूल में एक वास्तविक दीक्षा हेतु एक सच्ची पहल हो सकते हैं। ये और अन्य बहुत सारे अवसर जो युवाओं के बीच सुसमाचार प्रचार हमें इस बात को न भूलने दे कि बदलते समय और युवाओं की संवेदनशीलता में भी बहुत सारी चीजें हमें ईश्वर की ओर से मिलती हैं, जो कभी पुरानी नहीं होती क्योंकि वे अपने में शक्ति से भरी होती हैं, जो सभी समय और स्थान के परे जाती हैं। ईश्वरीय वाणी हमारे लिए सदैव जीवित और प्रभावकारी है। यीशु की उपस्थिति जिन्हें हम प्रेम प्रसाद में पाते हैं और मेल मिलाप का संस्कार जो हमें स्वतंत्र करता जिसके द्वारा हम अपने में ईश्वरीय शक्ति का एहसास करते हैं। हम उन अकथनीय बातों का भी जिक्र कर सकते हैं जिसे कलिसिया ने हमारे लिए सुरक्षित रखा है, जहां हम संतों के साक्ष्य और अद्वितीय धार्मिक गुरुओं की आध्यात्मिक शिक्षा को पाते हैं। यद्यपि हमें विकास के बहुत से स्तरों का सम्मान करने की जरूरत है, कई बार हमें धैर्य पूर्वक सही समय की प्रतीक्षा भी करनी होती है। हम जीवन के इन झरनों से युवाओं की प्यास बुझाने हेतु उन्हें निमंत्रण देने में असफल नहीं हो सकते हैं। हमें उन्हें इस महान तथ्य से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। सामान्य प्रेरिताई कार्य जो व्यवस्थित रूप में पल्लियों और कई एक संघों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, हमारे लिए यह जरूरी है कि हम युवाओं की प्रेरिताई के संबंध में एक विशिष्ट प्रेरिताई कार्य को भी स्थान दें जो अपने में एक अलग ही शैली, समय, गति और स्वरूप की होती है। यह विस्तृत और अपने में लचीला हो, जो हमें उन स्थानों में ले चलता है जहां युवा सचमुच अपने में सक्रिय होती और स्वाभाविक रूप में अपने नेतृत्व के गुणों तथा पवित्र आत्मा द्वारा बोए गए आदर्शों को अपने जीवन में विकसित करते हैं। यह युवाओं की मुसीबतों का समाधान ढूंढना है, उन्हें नियमों, नियंत्रणों और आवश्यक स्वरूपों के बंधन में बांधने की कोशिश नहीं करना है, जो पड़ोस में अपने को स्वाभाविक अगुओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें सिर्फ उनके साथ चलने और उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है और अधिक भरोसा में उन्हें पवित्र आत्मा के विवेक पर समर्पित करने की आवश्यकता है, जो उन्हें अपने विचारों के अनुरूप जहाँ चाहते वहाँ संचालित करने की कोशिश करते हैं। हम सही अर्थ में विशिष्ट नेताओं की बात करते हैं, जो अभी जातीय वर्ग से नहीं और न ही चुनिंदे छोटे बंद समुदायों से संबंध रखते हैं। युवाओं के नेतृत्व हेतु नेताओं की खोज इस बात की मांग करती है कि उन्हें लोगों की भावनाओं को सुनने हेतु सीखने की जरूरत है, जिससे वे उनके प्रवक्ता बन सकें और उनके विकास हेतु कार्य कर सकें। यहाँ लोगों की चर्चा का संबंध सामाजिक स्वरूप से या कलीसिया से नहीं है जो व्यक्तिगत रूप में जीवन यापन करते, वरन उन लोगों से है जो एक समुदाय के रूप में एक दूसरे से संयुक्त हैं, जो गरीबों और अति संवेदनशील लोगों को अपने जीवन से अलग नहीं करते हैं। ये वे लोग हैं जो सभी की भलाई हेतु प्रयासरत रहते और सबों को, यहाँ तक कि समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को भी एक साथ लेकर चलते हैं, जिससे सभी एक साथ एक जगह पहुंच सकें। विशिष्ट नेतागण इस भांति सबों के लिए, चाहे वे गरीब, संवेदनशील, चोटिल और घायल ही क्यों ना हो, सबों को आगे लेकर चलने हेतु कार्य करते हैं। वे उन युवाओं का परित्याग नहीं करते या उनसे नहीं डरते जो अपने जीवन में दर्द की अनुभूति करते या अपने जीवन में क्रूस के भार से अपने को दबा हुआ पाते हैं। श्रोताओ, उसी भांति खास रूप से युवाओं के संबंध में जो ख्रिस्तीय परिवारों या संस्थानों से नहीं आते हैं, जो धीरे धीरे अपनी प्रौढ़ता में विकास करते, हमें उन्हें जहाँ तक बन पड़े सभी रूपों में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। संत पापा कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने हमें इस बात की चेतावनी दी कि हम केवल गेहूं की अच्छी बालों को ना देखें। कभी कभी युवाओं की प्रेरिताई के शुद्ध विकास और उसे प्रकाष्ठा तक ले जाने हेतु हमें सुसमाचार की ओर अभिमुख होने की जरूरत है, जहां हम उसे एक सुस्त, निरस, अर्थहीन और अनाकर्षक प्रस्ताव के रूप में पाते हैं। यदि हम युवा प्रेरिताई में इन बातों को नजरअंदाज करते तो हम युवाओं की दुनिया से अपने को अलग कर लेते हैं और अपने को केवल उन्नत ख्रिस्तीय युवाओं तक ही संकुचित कर लेते, जो अपने को अलग ही भावना से देखते, जबकि ऐसा जीवन अपने में एक खालीपन और अनुत्पादक अलगाव में जीवन यापन करना है। जंगली घासों को उखाड़ने के क्रम में हम उन छोटे पौधों को भी नष्ट कर देते या हानि पहुंचाते हैं, जो अपनी कमजोरियों के बावजूद अपने में विकास करने की कोशिश करते हैं। युवाओं को नियमों से बोझिल करने के बदले, जो ख्रिस्तियता को संकुचित और नैतिकवादी धर्म निरूपित करता है, हम इसलिए बुलाए जाते हैं कि हम उनके निर्भीकता में उन्हें उत्तरदायित्वों को कंधों में लेने हेतु तैयार करें। हम उन्हें इस बात के ज्ञान से वाकिफ करें कि जीवन में गलतियां, असफलताएं और कठिनाइयां जीवन के वे अनुभव होते हैं जो हमारी मानवता को और भी मजबूत बनाते हैं। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरे आसन के पास आऊं कृपा मिलती है, आसन के पास आऊं कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज माता कलीसिया आज के संत जॉन मेरी व्यानी का पर्व मनाती है। संत जॉन मेरी व्यानी पल्ली पुरोहितों के संरक्षक माने जाते हैं। इस अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने अपने ट्वीट संदेश में सभी पल्ली पुरोहितों को संबोधित करते हुए करुणा और दया का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने संदेश में लिखा, प्रिय पुरोहित भाइयों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम ऐसे व्यक्ति बन सकें जिनका जीवन करुणा और दया का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे केवल यीशु प्रदान कर सकते हैं। संत जॉन मेरी व्यानी के पर्व के उपलक्ष्य में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन फ्रांस के आज गए हुए हैं। लाहौर महाधर्म प्रांत में गिरजाघरों को पुनः खोलने की तैयारी हो रही है। महाधर्म अध्यक्ष सेबास्टियन शो ने इसी माह में गिरजाघरों को पुनः खोलने का संकेत दिया है। गिरजाघरों को पुनः खोलने की घोषणा प्रेरित पत्र द्वारा की गई एवं वीडियो संदेश के माध्यम से 1 अगस्त को कार्तिक टीवी पाकिस्तान द्वारा प्रकाशित किया गया। महाधर्म अध्यक्ष शो ने कहा, ईश्वर को धन्यवाद, हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बतलाए गए सलाहों का पालन किया और हमारी सरकार वायरस को फैलने से रोकने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यह प्रमाणित करता है कि हम इससे लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, सभी गिरजाघर रविवार 16 अगस्त को सार्वजनिक मिसा के लिए पुनः खोल दिए जाएंगे। जब आप गिरजा आते हैं तब सैनिटाइजर लाने, मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए ना भूलें। मिसा की अवधि कम होगी, आवश्यकता के अनुसार मिसाओं की संख्या बढ़ा दी जाएगी। 15 अगस्त को महाधर्म प्रांत में माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण पर्व के अवसर पर धन्यवाद मिस्सा अर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय स्तर पर तालाबंदी की घोषणा के पहले 15 मार्च से ही गिरजाघरों को बंद कर दिया गया था। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अब तक करीब 2,80,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 6,000 मौतें हुई हैं। 19 मार्च को राज्य और संघ सरकारों ने गिरजाघरों को सिर्फ रविवार के दिन खोलने की अनुमति दी थी। इसकी घोषणा कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के धर्मदर्शों एवं अंतर धार्मिक सौहार्द के प्रतिनिधियों की सभा के बाद की गई थी। संत पैट्रिक महागिरजाघर के रेक्टर फादर मारियो रोड्रिगस ने कहा, दैनिक मिसा सिर्फ 30 मिनट का है जबकि रविवार को 45 मिनट लगता है। कलीसियाई समिति को उपायों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। संत पापा फ्रांसिस ने मनागुआ के महाधर्म अध्यक्ष कार्डिनल लियोपोल्डो ब्रेनेस को एक संदेश भेजकर मनागुआ के महागिरजाघर में शुक्रवार को हुए हमले पर वहां के विश्वासियों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। संत पापा ने संदेश में लिखा, प्यारे भाई, मैं तोड़ फोड़ के इस दुखद कृत्य में आपके तथा आपके लोगों के साथ हूँ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को भी देवदूत प्रार्थना के उपरांत निकारागुआ की कलीसिया के लिए प्रार्थना की थी। विगत शुक्रवार को किसी अज्ञात हमलावर ने मनागुआ के महागिरजा घर में प्रवेश कर अन्य पौत्र वस्तुओं के साथ 40 साल पुराने क्रूस को जला दिया। कार्डिनल ब्रेनस ने यूट्यूब पर प्रसारित क्रिस्त्याग में घटना की निंदा करते हुए इसे एक आतंकवादी कृत्य कहा। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस को उनके एकात्मकतापूर्ण संदेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, संत पापा के एक भाई एवं मित्र के समान सामिप्य महसूस करना कितना खूबसूरत है। सामिप्य हमें विश्वास में सुदृढ़ करता एवं आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देता है। घटना के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेक्सिको के धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने हमले को एक निंदनीय कृत्य एवं दुखद घाव कहा तथा शांति और सौहार्द का आह्वान किया। इक्वाडोर, पनामा, कोस्टारिका एवं ग्वाटेमाला के धर्माध्यक्षों ने भी हमले की निंदा की है। निकारागुआ के गिरजाघरों में पहले भी हमले हुए हैं। 29 जुलाई को अज्ञात लोगों ने निंदिरी नगरपालिका स्थित माता मरियम सदा सहायिका के प्रार्थनालय को अपवित्र किया था, जबकि 27 जुलाई को इसी शहर में वेरा क्रूज पल्ली में कार्मेल की माता मरियम के प्रार्थनालय के पौत्र संदूक को जमीन पर फेंक दिया था। उधर पंजाब में जहरीली शराब से 104 लोगों की मौत पर भारत के ख्रिस्ती धर्म गुरु सदमे में हैं। राज्य के अधिकारियों ने 2 अगस्त को मीडिया को बतलाया कि तरन तारण में 78, अमृतसर में 12 और बटाला में 11 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के साथ सम्मान सेवानिवृत्त सहायक धर्माध्यक्ष एवं जालंधर धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक अंजेलो रूफिनी ग्रेसिस ने उका समाचार को बतलाया, यह एक त्रासदी है जिसको अधिकारियों द्वारा अधिक सतर्कता बरतकर आसानी से रोका जा सकता था। यह एक मानव निर्मित त्रासदी है। शोकित परिवारों को हमारी हार्दिक संवेदना, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने कहा, यह भी दुखद है कि जब देश कोविड-19 से लड़ रहा है तो मुनाफाखोर आम लोगों की जिंदगी को जोखिम में डालकर उन्हें जहरीली चीजें खिला रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कोई ख्रिस्ती परिवार भी इस त्रासदी का शिकार हुआ है। इस बीच विपक्षी आम आदमी पार्टी ने मौतों की न्यायिक जांच के लिए राज्य भर में कई विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके कारण गरीब परिवारों से आने वाले अधिकांश पीड़ितों की मृत्यु हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और 7 उत्पाद शुल्क अधिकारी तथा 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की गई है। भारत के जेल प्रेरिताई के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष अल्विन डी सिल्वा ने कैदियों की गरिमा और वास्तविक सामाजिक एकीकरण हेतु रविवार जेल प्रेरिताई का समर्थन किया। भारत की कार्तिक कलीसिया ने 2 अगस्त को जेल प्रेरिताई रविवार मनाया। इस अवसर पर भारत के जेल प्रेरिताई के अध्यक्ष मुंबई के धर्माध्यक्ष अल्विन डिसूजा ने एक प्रेरितिक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें देश में कैदियों की गरिमा एवं सामाजिक एकीकरण का समर्थन किया गया है। धर्माध्यक्ष डिसूजा ने कहा, वास्तविक सामाजिक एकीकरण विकास, शिक्षा, उचित काम, स्वास्थ्य सुविधाओं और इसके साथ साथ नागरिक भागीदारी के लिए सार्वजनिक स्थान बनाने के अवसर की गारंटी के साथ शुरू होता है। उन्होंने कहा, जिन कैदियों ने अपने अपराध के लिए सजा पूरी की है, उन्हें तिरस्कार एवं उदासीनता के नए सामाजिक दंड का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।